मान्या के मरने के बाद प्रतिभा राजस्थान आ चुकी थी। जिस बेरहमी से युग ने मान्या को मारा था, उसके बाद प्रतिभा का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया था। बदला लेने की चाह में वो तेज सिंह राणावत के छोटे भाई अभय सिंह राणावत की हवेली पहुंच चुकी थी। रात के 2 बजे के करीब अभय सिंह राणावत की हवेली में एक मीटिंग रखी गई, जहां माफिया से जुड़े हुए और भी लोग मौजूद थे। वो सभी लोग युग के खिलाफ बगावत करना चाहते थे, लेकिन युग माफिया किंग था और उसके पास उनकी कोई ना कोई कमजोरी मौजूद थी। वे चाहकर भी उसके खिलाफ सर नहीं उठा सकते थे। वो बस युग की कमजोरी जानना और उसके खिलाफ उसका इस्तेमाल करना चाहते थे। आज प्रतिभा के जरिए उन्हें ये मौका मिला था, तो वो सब अभय के एक छोटे से कॉल पर जयपुर पहुंच चुके थे। जैसे ही प्रतिभा मीटिंग के अंदर गई, उसने इतने सारे लोगों को देखा तो वो हल्का सक पका गई थी। अभय ने उसकी घबराहट को दूर करने के लिए नरम लहजे में कहा, चिंता मत करो, ये हमारे ही आदमी है। वैसे भी युग राणा जैसे लोगों के दुश्मनों की कमी नहीं है, बस ये बात अलग है कि वे कभी एकजुट नहीं हो पाए। प्रतिभा ने हल्के से सिर हिलाया और उनके बीच जाकर बैठ गई थी। उसकी आंखें अभी भी सूजी हुई थीं, जिसका मतलब साफ था कि आलाम करने के बजाय वो रो रही थी। अभय ने प्रतिभा के उतरे हुए चेहरे को देखा और धीमी आवाज में कहा, हमें तुमसे पूरी हमदर्दी है। सिर्फ तुम अकेली नहीं हो जिसके किसी अपने को युग राणा ने खत्म किया है। उसने हमारे भाई साहब, भाभी और उनकी इकलौती बेटी को मारा। वो हमारे भाई साहब और भाभी की आखिरी निशानी को भी लेकर चला गया। उससे हमारी तकलीफों का अंदाज़ा तभी होगा जब उसका कोई अपना उसकी आंखों के सामने मारा जाएगा, प्रतिभा ने सिसकती आवाज में कहा। अभय और प्रतिभा की बातें बाकी लोग गौर से सुन रहे थे। उनमें एक औरत भी बैठी हुई थी, जो चेहरे से काफी सख्त नजर आ रही थी। पूरी बात सुनकर उसने अपनी आंखें घुमाकर कहा, सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होगा। बात तो तब बनेगी जब ऐसा हकीकत में हो, और हर कोई जानता है कि उसके किसी भी अपने के पास पहुंचना किसी भी माफिया के बस में नहीं है। मिस विलियम्स बिल्कुल सही कह रही हैं, उसका साथ देते हुए दूसरा आदमी बोला। हर कोई जानता है कि उसकी पत्नी कृषा ही उसकी एकमात्र कमजोरी है। कृषा सिंघानिया कभी युग राणा के अलावा अकेले नजर नहीं आई। रही बात उसके बेटे की, तो वो तो खुद फ्यूचर में माफिया किंग बनने वाला है। वो कोई बच्चा नहीं है जिसे हम मारकर युग से बदला ले सकें। जिसने भी उसे देखा है, उसका यही कहना है कि बेरहमी के मामले में उसने अपने बाप को भी एक कदम पीछे छोड़ दिया है। प्रतिभा चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी। अभी उस आदमी ने जो कहा, उससे हर कोई सहमत था। एक पल के लिए वहां खामोशी छा गई थी। बदला तो हर कोई लेना चाहता था, पर हिम्मत किसी में नहीं थी कि वो युग के पास तक पहुंच सके। युग तो दूर की बात है, वे उसके किसी अपने तक को चुप नहीं पहुंचा सकते थे। उस गहरी खामोशी को तोड़ते हुए प्रतिभा ने सख्त आवाज में कहा, हमारा टारगेट उसकी पत्नी या बेटा नहीं, उसकी बेटी होगी। क्या, बेटी? अभय चौंकते हुए बोला, उसकी खुद की कोई बेटी नहीं है? उसकी 8 साल की बेटी है, जिसे उसने सबसे छुपा कर रखा। छुपा कर रखा मतलब वो उसे कुछ होने से डरता है। मैंने और मासी ने खुद राणा मेंशन में उस बच्ची को देखा था, जो सच में बहुत इनोसेंट थी। हमने उसी को टारगेट करने का प्लान बनाया था। युग को इस बात की भनक हुई कि मासी उस बच्ची से मिली थी, तो उसने एक पल भी नहीं सोचा और मासी को मार दिया। सोचो वो उसके लिए कितना पजेसिव होगा। प्रतिभा ने उन सबको याशी के बारे में बता दिया था। इस वक्त प्रतिभा को भले ही ये लग रहा था कि उसने एक सामान्य सी जानकारी उन लोगों को दी है, लेकिन माफिया की दुनिया में याशी की मौजूदगी और उसके युग की कमजोरी होने का सच सामने आना उन सबके लिए किसी झटके से कम नहीं था। युग ने याशी को इसी स्थिति से बचाने के लिए उसके बारे में किसी को नहीं बताया था। अभय के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट उभर आई थी। वो प्रतिभा की तरफ देखकर बोला, तुम नहीं जानती तुमने हमें कितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है। जानते हैं उस बच्ची तक पहुंचना आसान नहीं होगा, लेकिन अगर उसे कुछ हुआ तो उसे तकलीफ होगी, और ये सोचकर ही हमें खुशी हो रही है। अब लग रहा है कि इतने साल इंतजार करने और तुम्हारा साथ देने का फल हमें अच्छे से मिल रहा है। हाँ, अब हम कह सकते हैं कि हमें हमारा सही टारगेट मिल गया है। मिस विलियम्स ने भी मुस्कुराते हुए अभय की बात पर हामी भरी। वे सब इतनी जानकारी से ही खुश थे, लेकिन प्रतिभा के पास और भी बताने को था। वो खड़ी हुई और उसने तेज आवाज में कहा, मेरे पास और भी इन्फॉर्मेशन है जो इससे भी जरूरी है। सभी प्रतिभा की तरफ देखने लगे थे। याशी के बारे में पता चलने से ज्यादा जरूरी जानकारी और क्या हो सकती थी? फिर भी अगर प्रतिभा किसी बड़ी इन्फॉर्मेशन की बात कर रही थी, तो ये उनके लिए जैकपॉट लगने जैसा था। वहीं दूसरी तरफ प्रतिभा की साजिशों से बेखबर ध्रुव कृषा को लेने घर गया हुआ था। उसके पीछे तारा हॉस्पिटल में अकेली थी। उसे इस बात का बुरा लग रहा था कि उसकी सच्चाई जानने के बावजूद ध्रुव उस पर यकीन नहीं कर रहा था। ऊपर से वो बार बार अपने शब्दों से उसे चोट पहुंचा रहा था। युग के लिए पहले से ही सिक्योरिटी मौजूद थी, उसके बावजूद ध्रुव अर्जुन को वहां छोड़कर गया। अर्जुन जब तारा के पास गया तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि तारा की शादी ध्रुव से हुई है। मैं तुम्हारी शादी में नहीं आ पाया था, लेकिन तुमने ध्रुव राणा से शादी की है। तारा, तुम जानती हो ना राणा फैमिली की सच्चाई क्या है, और जहां तक मुझे याद है तुम डिफेंस में थी, अर्जुन हैरत भरे लहजे में बोला। वहीं तारा के सामने भी एक नया खुलासा हुआ कि अर्जुन ध्रुव का मामा है। तारा ने गहरी सांस ली और कहा, सोचा तो मैंने भी यही था कि अपनी कंट्री को सर्व करूंगी, पर किसे पता था कि एक माफिया फैमिली में आकर फंस जाऊंगी। तारा कुछ पल रुकी और फिर अर्जुन की तरफ देखकर आगे कहा, वैसे आपसे क्या छुपाना, आपको तो सब कुछ पहले से पता होगा। कुछ सो कॉल्ड पड़ाव और माफिया किंग बनने की रेस, अनफॉर्चुनेटली आज मैं उस जगह पर खड़ी हूँ जहाँ सालों पहले आपकी बहन खड़ी थी। अर्जुन को माफिया की दुनिया में कोई इंटरेस्ट नहीं था, ना ही कभी उसने इस बारे में जानने की कोशिश की थी, पर हाँ उसे आदित्य के जरिए बहुत कुछ बातें बता थी। आदित्य इस दुनिया में नहीं रहे थे, पर अमृता और सारा अभी भी माफिया की दुनिया में एक्टिव थे और उनके जरिए उसे थोड़ा बहुत पता चल जाता था। तो ये वजह है कि तुमने कृषा को हर्ट किया फिर भी ध्रुव को तुमसे शादी करनी पड़ी? अर्जुन को तुरंत ही सब समझ आ गया था। तारा ने उसकी बात पर हामी भरी और मायूस आवाज में कहा, मैंने उन्हें जानबूझकर हर्ट नहीं किया था, और ये बात वो अच्छे से जानता है। उसे मेरे इंटेंशंस भी पता है, पर वो एक मौका नहीं छोड़ता मुझे बुरा फील करवाने में। आई हेट हिम। काश मैं तुम्हें ये कह सकता कि एक दिन सब सही हो जाएगा। तुम माफिया के एक ऐसे जाल में फंस गई हो जिससे तुम कभी चाहकर भी बाहर नहीं निकल पाओगी। ना मेरी बहन निकल पाई थी। उम्मीद है अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लो और खुद को खुशकिस्मत समझो कि ध्रुव अपने डैड की तरह नहीं है जो कृषा से पागलों की तरह प्यार करे। इसी बहाने तुम्हारे पास एक उम्मीद है कि तुम आज नहीं तो कल इन सबसे छुटकारा पा सकती हो। अर्जुन ने उसे आश्वासन दिया, पर न जाने क्यों तारा को ये सब सुनकर अच्छा महसूस नहीं हो रहा था।
तारा ने अपना सिर झुकाया और उसे अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया था। उसने मायूस आवाज में कहा, आपको लगता है कि मैं इन सबसे आजाद हो पाऊंगी? लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसके ताने सुन सुनकर ही मैं मर जाऊंगी। तारा ने गहरी सांस ली और फिर अर्जुन की तरफ देखकर भरी आवाज में कहा, आप जानते हैं ना अर्जुन सर, मेरा वीक पॉइंट यही है कि मुझे किसी की बेरुखी सहन नहीं होती है। अनफॉर्चुनेटली मैं उससे प्यार करने लगी थी और यही चाहती थी कि उसके साथ पूरी लाइफ बिताऊंगी। किसने सोचा था कि एक दिन बिताना भी मुश्किल हो जाएगा? हमारी शादी को मुश्किल से दो दिन बीते हैं और उसने मेरा जीना हराम कर रखा है। तारा ने अपने दिल की बात अर्जुन के सामने रख दी थी। पुलिस फोर्स की ट्रेनिंग लेते वक्त तारा ने मेडिकल ट्रेनिंग भी ली थी और उसमें अर्जुन के साथ उसने थोड़े टाइम के लिए काम किया था। अर्जुन का बर्ताव काफ़ी अच्छा था और तारा उसके साथ काफ़ी खुल भी गई थी। इतने दिनों में तारा पहली बार अपने दिल की बात किसी के सामने खुलकर रख रही थी। अर्जुन को तारा के लिए बहुत बुरा लग रहा था। अर्जुन ने तारा की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, मेरे साथ मेरे केबिन में चलो, मुझे पता है कि ध्रुव को कैसे हैंडल करना है। लेकिन मिस्टर राणा, तारा हिचकिचाते हुए बोली, वो ध्रुव की एब्सेंस में युग को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। उसकी बात सुनकर अर्जुन ने आंखें घुमाई और इधर उधर इशारा करते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है कि इतने सारे सिक्योरिटी गार्ड्स के होने के बाद कोई उसे चोट पहुंचाने आएगा? और ये हॉस्पिटल मिस्टर मानव कपूर का है। तुम मानव कपूर को नहीं जानती होगी, लेकिन वे युग के मामा हैं। बाहर की सिक्योरिटी भी काफ़ी टाइट रहती है। तारा ने अर्जुन की बात पर हामी भरी और फिर अर्जुन के साथ चली गई थी। दूसरी तरफ रात के 3 के करीब ध्रुव घर पहुंचा। ध्रुव ने देखा कि लिविंग एरिया की लाइट अभी भी जल रही थी और कृषा चेयर पर ही बैठे बैठे सो गई थी। उसे देखकर साफ जाहिर हो रहा था कि वो उन सब के आने का इंतजार कर रही थी और आखिर में थककर उसे वहीं नींद आ गई थी। कृषा का चेहरा चेयर पर लीन था, उसके बाल चेहरे पर आ रहे थे। ध्रुव ने उसके बालों को सही किया और धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा, जिससे कृषा हड़बड़ाकर उठ गई थी। तुमने मुझे डरा दिया, कृषा ने उनींदी आवाज में कहा। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, और आपको नींद आ रही है तो यहाँ सोने के बजाय आपको बेडरूम में होना चाहिए, ध्रुव ने शांत लहजे में कहा। कृषा ने मुंह बनाकर उसकी तरफ देखा और कहा, तुम दोनों बाप बेटे के होते हुए मैं कभी चैन से सो पाई हूँ? दोनों पूरे दिन से गायब हो, और अब वो कहाँ रह गया? डोंट टेल मी कि वो अभी भी नहीं आया है। ध्रुव के चेहरे की थकान और परेशानी कृषा की आंखों से छुप नहीं रही थी। ध्रुव कुछ पलों के लिए चुप हो गया था। उसे समझ नहीं आया कि वो कृषा को युग के बारे में कैसे बताए। उसने गहरी सांस ली और कृषा की आंखों में देखकर बेहद धीमी आवाज में कहा, डैड हॉस्पिटल में है। ध्रुव ने सिर्फ ये शब्द कहे ही थे कि कृषा ने उसे खुद से दूर थतीला और जल्दी से चलते हुए बाहर जाने लगी। उसकी इस हरकत पर ध्रुव ने अपनी मुट्ठियां बांध ली और वो तेज कदमों से चलकर उसके पीछे जाने लगा। साथ चलते हैं कृषा, ध्रुव कृषा के पास आते हुए बोला। आई हेट बोथ ऑफ यू। सुबह से चल रहा है ना ये सब, और तुम दोनों मुझसे छुपा रहे थे? अगर मुझे उसकी परवाह नहीं होती तो ना तो मैं तुम्हारे साथ जाती और ना ही उसे देखने के लिए हॉस्पिटल जाने वाली थी। हमेशा मुझसे चीजें छुपाते रहते हो। देखना, किसी दिन मैं भी यही करूंगी। और कृषा बोलते हुए रुक गई थी और रोने लगी थी। ध्रुव ने उसे चुप करवाने के लिए अपने सीने से लगा लिया था। वो उसे सहलाते हुए बोला, वो अब ठीक है, पता है मुझे। तभी तो मुझे यहाँ बताने के लिए आए हो, कृषानी से सख्ती आवाज में कहा। ध्रुव उसे सहलाते हुए गाड़ी के पास लेकर जा रहा था। अस्पताल पहुंचने तक कृषा ने ध्रुव की तरफ एक बार भी नहीं देखा और वो पूरे रास्ते रोते हुए गई थी। ध्रुव की हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वो कृषा को चुप करा सके, बस उसे रोता देखकर उसे गुस्सा आ रहा था। जब हॉस्पिटल के आगे गाड़ी रुकी तब कृषा जल्दी से उतरकर दौड़कर अंदर जाने लगी। ध्रुव उसके पीछे आ रहा था। वे दोनों जल्द ही युग के कमरे के आगे खड़े हुए थे। कृषा जल्दी से अंदर घुस गई जबकि ध्रुव अभी भी बाहर खड़ा हुआ था। उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थी क्योंकि आसपास ना तो तारा नजर आ रही थी और ना ही अर्जुन। डोंट टेल मी कि तुम यहां से भाग गई हो और मामू ने तुम्हारी हेल्प की है, ध्रुव खुद से बड़बड़ाते हुए बोला और उसकी आंखें हैरानी से फैल गई थीं। फिलहाल के लिए इतना ही। क्या सच में तारा भाग गई है? और अगर उसने ऐसा किया है तो सच में कहना पड़ेगा कि काफी हिम्मत का काम किया है। पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा। अगले भाग पर मिलते हैं।